मेरे अजीज साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 27 अक्टूबर 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से मित्रों, अपने उन 8-9 जवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं प्रमोद कुमार मीना, आप जयपुर से हैं, रंजन कुमार, आप 12 पटना से हैं, काफी रहमान, आप इंत्योधोक गोंडा से हैं, राजकुमार अग्रवाल, आप अहमदनगर महाराष्ट्र से हैं, लौकुश लोधी सागर मध्य प्रदेश से हैं, गुड्डू कुमार प्रसाद छपरा बिहार से हैं, फारूख अहमद भाटी आप मांगर राजस्थान से हैं और प्रिया पांडे त्रिभुवन आप ठाणे महाराष्ट्र से हैं। तो प्रमोद, रंजन, काफी रहमान, राजकुमार, लौकुश, गुड्डू, फारूख और प्रिया, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के इस चरण के बाद अब हम लोग आते हैं अपने न्यूज एनालिसिस पर। और इस न्यूज एनालिसिस की शुरुआत हम लोग करेंगे कल के आकाशवाणी समाचार से। कल के आकाशवाणी समाचार में दोस्तों 3-4 बातें हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। उसमें कुछ बातें तो सीधे सीधे न्यूज की हेडलाइंस में थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थी जो हेडलाइंस में तो नहीं थी, लेकिन उसका उसको जब एक्सप्लेन किया जा रहा था उसके अंदर वो बातें थी। तो पहले हम थोड़ा सा उसका परिचय ले लेते हैं। नो डाउट कि सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी जिसको लेकर हम लोग थोड़ी सी लंबी बात भी करेंगे, वो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको लेकर के खबर थी, आपने सुनी है। उसी के तहत मित्रों, जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की खबर सुन रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था, बदलता हुआ भारत, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत बदल रहा है। और उन्होंने जो न्यूजीलैंड के जो लीडर आए हुए हैं उनसे भी ये बात कही है कि भारत बदल रहा है। न्यूज में आपने देखा कि भारत बदल रहा है के संदर्भ में उन्होंने कुछ भारत द्वारा शुरू की गई योजनाओं की भी चर्चा की, याद दिलाने की कोशिश की। उसमें आपने स्टार्टअप इंडिया की बात सुनी, उसमें आपने डिजिटल इंडिया की बात सुनी, उसमें आपने मेक इन इंडिया की बात सुनी, उसमें आपने स्मार्ट सिटी की भी बात सुनी। तो मित्रों, ये जो 4-5 जो योजनाएं हैं ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो हमारे सीधे सीधे आर्थिक विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो मैं खासकर आपको इसके माध्यम से कहना केवल यह चाह रहा हूं कि इन योजनाओं के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अच्छी जानकारी होने का मतलब मैं रटने की बात से नहीं कह रहा हूं कि इनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो तो आपको मालूम होने ही चाहिए, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका क्या रोल है, रियल में रोल क्या है, और सच बात यह है कि किस तरीके से लागू किए जा रहे हैं, कितनी इफेक्टिविटी है, अभी तक के क्या रिजल्ट्स मिले हैं, इनके क्या चैलेंजेस हैं और आगे इनमें किस तरह से सुधार किए जाने चाहिए, इन सब पर एनालिटिकल समझ आपकी इन सब बातों पर होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने कल प्रगति की मीटिंग ली है। प्रगति की मीटिंग आप जानते हैं हमारी जो आर्थिक योजनाएं हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करने वाली मीटिंग है जो प्रधानमंत्री लेते हैं। उसमें सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स और स्टेट के भी जो सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स होते हैं वो सब भाग लेते हैं और उसमें समीक्षा की जाती है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। उसको प्रगति नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसमें उन्होंने 2-3 बातें और कही थी जिन पर मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, जो हेडलाइन से हटकर हैं। उन्होंने एक बात श्रमिक के बारे में, श्रमिकों के बारे में कही कि जो श्रमिकों का जो कल्याण है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और दूसरी जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और मुझे लगता है कि ये साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कल डीडी न्यूज में इसे अलग से हेडलाइंस के रूप में दिखाया भी गया था, वो है ई नैम के ऊपर। ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। मतलब आपको मालूम है कि जो अभी तक मंडियों का जो एक्ट है, जो स्टेट गवर्नमेंट जिस एक्ट के तहत मंडियों पर नियंत्रण रखती है, जिसको लेकर के लगातार एक बहस छिड़ी हुई है कि इससे किसानों के जो लाभ हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, जो बिचौलिए हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। इसको खत्म करने के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक कृषि, राष्ट्रीय कृषि बाजार लेकर आई है, जिससे कि देश के सभी बाजार एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इस पर जल्दी से जल्दी और सही तरीके से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का वायदा किया है। तो आप कैसे दुगुना करेंगे? तो निश्चित रूप से लोगों को यह महसूस होता है कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बाजार व्यवस्था को सुधार दी जाए तो उनकी आमदनी काफी बढ़ सकती है। इसके बारे में हम लोग इससे पहले बातें कर चुके हैं और मैं स्पेशली अपने बैच के स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि उनको इससे रिलेटेड एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी भेजा गया था। तो ये एक अच्छा अवसर है जब उस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस को वे एक बार फिर से सुन लें। तो मित्रों, ये जो पहली हेडलाइंस थी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के थी। बाद में जो खबरें थी, जिनके बीच से खबरें निकल रही हैं, उसके बारे में मैंने आपसे कुछ बातें बताई हैं। इसी के तहत फिर एक हेडलाइन थी दोस्तों की, जो हमारे वेंकैया नायडू जी जो हैं, जो शहरी विकास मंत्री और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है और ये कहा है कि जो समान नागरिक संहिता की जो बहस देश में चल रही है, या अभी कॉमन सिविल कोड को लेकर के, हालांकि अब कॉमन सिविल कोड से हट करके जो बहस है वो थोड़ी सी दूसरी तरफ आ गई है। तीन तलाक और बहुविवाह प्रथा, एक तरह से एक मुस्लिम समुदाय जो है उसकी परंपराओं और पर्सनल जो लॉ है उस पर केंद्रित हो गई है। इसके बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो समान सिविल कोड अगर लाया भी जाएगा तो वो बिना सभी की सहमति के बिना नहीं लाया जाएगा, उसके लिए सभी की सहमति ली जाएगी। यानी कि उन्होंने बहुत एश्योर कर दिया है कि सरकार यह ना सोचे कि उसे सरकार थोपेगी। तो एक अच्छा एक डेमोक्रेटिक करेक्टर गवर्नमेंट ने दिखाया है। इसी के साथ ही आपको एक न्यूज ऐड करनी पड़ेगी जो अखबारों में है, जो हमारे न्यूज़पेपर्स में भी नहीं है, और मुझे कल न्यूज चैनल्स में भी वो बात दिखाई नहीं दी कि जो विधि आयोग है, जो लॉ कमीशन है, उस लॉ कमीशन ने अब जो राजनीतिक दल हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को भी क्वेश्चनायर भेज करके उनकी ओपिनियन जाननी चाहिए। आपको मालूम है कि तीन चार दिन पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो विधि आयोग है उसने बहुत से सभी लगभग सभी समुदायों को कुछ प्रश्न भेजे हैं उनकी पर्सनल लॉ के बारे में, उनकी ओपिनियन जाननी चाहिए अलग अलग समूहों से, कम्युनिटी से। उसमें मुस्लिम भी हैं जिसको लेकर के अभी बहस चल रही है। तो केवल मुस्लिम्स को नहीं भेजा गया है, वो दूसरे समुदायों को भेजा गया है, को भी भेजा गया है। मित्रों, उसमें एक एडिशन और है जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल कर लिया है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कह लीजिए, टूवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, मतलब पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग आप कह लीजिए, कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन में ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए। उसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण ये है और मुझे लगता है कि अभी लॉ कमीशन ने जो एक स्टेप उठाया है, इस हो सकता है कि इस स्टेप को फिर बाद में जो दूसरे आयोग अगर आएंगे इस तरह के से रिकमेंड करने वाले आयोग, तो शायद वो इसी पैटर्न को फॉलो करें और एक बहुत बड़ी बात होगी। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग के फील्ड में ये बहुत बड़ी बात होगी। और वैसे भी फ्रेंड्स, की जो न्यू मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है उसमें पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो बट नेचुरल है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक बात तो मान करके चले कि जो पॉलिटिकल पावर है वही रियल पावर है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम जो परिणाम है वो तो पॉलिटिशियंस के हाथ में, यानी कि सरकार के हाथ में है। तो राजनीतिक दल के विचार पता लग जाएंगे, पब्लिक में भी वो आ जाएंगे कि अलग अलग राजनीतिक दल इस मुद्दे पर क्या क्या धारणाएं लेकर के चलते हैं। तो समझ ये पूछ लीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो चीजों को मैनिपुलेट करते हैं समय के हिसाब से, कि अभी ये जरूरत है, वोट बैंक खराब होगा तो अभी ये कह लो, बाद में जब वोट की बात खत्म हो गई तो अपना स्टैंड बदल दो, कम से कम ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर वो इस तरह से अपने स्टैंड को बदल नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक तरह से माइलस्टोन स्टेप विधि आयोग ने लिया है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो न्यूज में भी नहीं थे और न्यूज़पेपर में जरूर ये बात है। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो खबर छोटी ही है लेकिन उसके माध्यम से मैं पॉलिटी की बात आप पॉलिटी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर। एक न्यूज आपने सुनी रेडियो में ही थी कि अभी समाजवादी पार्टी जहां जिसकी सरकार अभी उत्तर प्रदेश में है उनमें आंतरिक विवाद की स्थिति विद इन द पार्टी बनी हुई है। उसमें आपने एक न्यूज सुनी कि एक मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में ही जो जिनका नाम पवन पांडे है, उनको जो पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल जी यादव ने बर्खास्त कर दिया, मतलब उनको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन वो एमएलए थे तभी वो मंत्री हैं, राइट, यानी कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है लेकिन एमएलए हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। इसके बाद शिवपाल यादव जी ने चिट्ठी लिखी अखिलेश यादव जी को जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कि चूंकि अब वो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है तो आप उनको मंत्री पद से बर्खास्त कीजिए। व्यवहार में सामान्यतया यही होता है, मैं व्यवहार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अभी कोई स्टेप उठाया नहीं है। अब आपको सोचना यह है कि अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव उनको अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाते हैं, मंत्रिपरिषद से नहीं हटाते हैं, तो क्या वो अवैध होगा? क्या अनिवार्य है कि उनको अगर पार्टी से निकाल दिया गया है तो मंत्रिपरिषद से भी निकाला जाए? ये एक मुद्दा है और ये मुद्दा इस पॉलिटी की तरफ शो करता है मित्रों कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके उनके अपना जो संगठन होता है वो एक अलग होता है और जो सरकार होती है वो अलग होती है। ये बात अलग है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी से ही सरकार बनती है, लेकिन जो दोनों की जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज एक ही होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून के तहत अब वो समाजवादी पार्टी के मेंबर नहीं रह गए हैं, यानी कि उनका कोई दल नहीं रह गया है। अब सवाल यह कि उनको किस रूप में माना जाए। एमएलए तो हैं, ये नहीं है कि अगर किसी पार्टी ने अपने मेंबर को निकाल दिया चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो तो फिर एमपी भी नहीं रहेगा और एमएलए भी नहीं रहेगा। वो तो वो है, उसके लिए तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर जो हाउस के जो स्पीकर हैं वो कुछ ऐसा निर्णय लें उनके किसी कारगुजारी की वजह से कि उनकी सदस्यता खारिज की जा सके, या जो चुनाव आयोग है वह कुछ ऐसा कदम उठाए कि उनकी सदस्यता खारिज हो जाए, या न्यायालय कोई ऐसा कदम उठाए। ये तो है नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित किया है। तो याद रखिए कि पॉलिटिकल पार्टी अलग है और सरकार अलग है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में सरकार हैं, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के रूप में पार्टी के प्रमुख, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी पार्टी के प्रमुख है, लेकिन सरकार के प्रमुख नहीं है, सरकार के प्रमुख अखिलेश यादव हैं। तो ये जो अंतर है आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी की सीमाएं मर्यादाएं क्या हैं और सरकार की अपनी सीमाएं और मर्यादाएं क्या हैं। तो मुझे लगा कि इस घटना के माध्यम से मैं इसकी जानकारी आप लोगों को दे दूं ताकि पॉलिटी और जो गवर्नेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन है इन तीनों की स्पष्टता आपके दिमाग में आती चली जाए। तो मित्रों ये थे न्यूज के बारे में, रेडियो न्यूज के बारे में। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर पर, और न्यूज पेपर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं इसमें न्यूज भी है, रेडियो न्यूज भी है। रेडियो न्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ही लेकर के दो एडिटोरियल कमेंट न्यूज़पेपर से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, एक है टाइम्स ऑफ इंडिया का और दूसरा है इकोनॉमिक टाइम्स का। नो डाउट जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल कमेंट है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की दृष्टि से वो आपके लिए बहुत बेहतर है, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मित्रों आप वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं, तो वर्ल्ड बैंक चूंकि पूरी की पूरी दुनिया के जो मार्केट हैं वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं लिबरलाइजेशन के कारण, तो अब वर्ल्ड बैंक एक रैंकिंग निकालता है कि किस देश में बिजनेस जाकर करना कितना आसान है, इजी मतलब आसान, डूइंग मतलब करना, बिजनेस किस देश से करना कितना आसान है। देखिए आप जब किसी भी दूसरे देश में बिजनेस करने जाते हैं तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको बिजनेस के लिए जमीन लेनी पड़ेगी, कितनी जल्दी मिलती है, बिजनेस के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा जो भी कह लीजिए, वो कितनी जल्दी मिलती है, फिर आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी, बिजली आपको मिलती है कि नहीं मिलती है, फिर आपको बैंक से कर्ज की जरूरत पड़ेगी तो उसकी क्या स्थिति है, उस देश में जो टैक्सेस लग रहे हैं टैक्स कितने लग रहे हैं, फिर टैक्स संबंधित कितना उलझाव है, कितने विवाद हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर भी तो आप सोचेंगे ना कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के हैं, रूल्स रेगुलेशन सरकार के जो बने हुए हैं वो किस तरीके के हैं, अगर मामले कोर्ट में फंस जाते हैं, विवाद में चले जाते हैं, तो उनका निपटारा कितनी जल्दी होता है, कितने सही तरीके से होता है। तो जो भी बिजनेस करने जाता है वो इन सब चीजों को सोच विचार करके जाता है, और अगर उसे लगता है कि कहीं बिजनेस करना बहुत कठिन है, वहां बहुत ही झंझट का काम है, तो बट नेचुरल है कि फिर वो उसकी प्रायोरिटी में पीछे चला जाता है। राइट, यह इज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो मित्रों, इसमें वर्ल्ड बैंक फिर रैंकिंग निकालता है ताकि दुनिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको पता लग जाए कि उनके लिए कहां बिजनेस करना कितना आसान होगा। तो वर्ल्ड बैंक हर साल उनकी एक रैंकिंग निकालता है, और इस बार अभी 2016 में जो उस 189 कंट्रीज की उसने रैंकिंग निकाली है, कुछ अखबारों में 190 भी पढ़ने को मिल रहा है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। उसमें जो भारत की जो रैंकिंग दी है उन्होंने 130 दी है, 189, सोचिए कि कंट्री में भारत 130वें स्थान पर है इज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से। पिछले साल जब रैंकिंग आई थी तो 134 थी, मतलब हम 134 से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, 130 पर आ गए, मतलब बहुत थोड़ा सा सुधार हुआ है। और चाइना, जिससे हमारा कंपटीशन चलता है एक तरह से बिजनेस की दृष्टि से, वो 84 पर है, मतलब उसकी स्थिति हमसे काफी बेहतर है चाइना, इसलिए चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आ रहा है। हमारे यहां अभी उतना, फिर भी हम काफी कुछ भारत को मिल रहा है, लेकिन उस तरीके से स्थितियां नहीं हो रही हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं मित्रों, चूंकि वहां के प्राइम मिनिस्टर अभी हमारे यहां आए हुए हैं, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। इससे पहले सिंगापुर पहले स्थान पर होता था, इस बार सिंगापुर दूसरे स्थान पर चला गया है। तो मित्रों, ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और आप अक्सर अखबारों में बीच बीच में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं सॉरी, कि भारत को कुछ रिफॉर्म अपने यहां करने चाहिए, जिसकी वजह से विदेशियों को बहुत दिक्कत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो आप सुनते ही हैं, लेकिन दो तीन रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो लेबर रिफॉर्म है कि भारत को अपना जो लेबर लॉ है उस लेबर लॉ को बदलना चाहिए, साथ ही साथ जो नियम कानून है जिनमें कठोरता है उन्हें थोड़ा सा उन्हें काफी इजी करना चाहिए। और आपको मालूम है, कुछ दिनों पहले मैंने इसकी चर्चा भी की थी कि इनसॉल्वेंसी कोड भारत लेकर के आ गया है, तो उससे शायद लोगों को कुछ मदद मिलेगी। जो अगर भारत रिफॉर्म जल्दी से अपने लेकर के आ जाता है तो डेफिनेटली भारत अपने उस लक्ष्य को शायद हासिल कर ले जो उसने 50वां स्थान पाने की का उद्देश्य रखा है। लेकिन आपको यह सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि भारत ने ये जो 50वां स्थान पाने का जो लक्ष्य रखा है वो अगले साल तक रखा है, 2017 तक, जो सच पूछिए तो काफी दूर की कौड़ी अभी जान पड़ती है। तो मित्रों, अभी भारत को सच पूछिए तो लिबरलाइजेशन के 25 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि तंत्र में कोई बहुत सकारात्मक, थोड़े थोड़े बदलाव ठीक है, लेकिन बहुत सकारात्मक बदलाव आपको दिखाई नहीं देंगे। ब्यूरोक्रेसी की लगभग वही स्थिति है, लाल फीताशाही की जो जकड़ है वो कम नहीं हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा हम सुधार नहीं कर सके हैं, क्योंकि वो भी आखिर में इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि आपको फिर मार्केट भी चाहिए और हमारा मार्केट किसानों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एजुकेशन सिस्टम हम बहुत ज्यादा नहीं बदल पाए हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां इंडेक्स तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन टोटल इकोनॉमी के संदर्भ में इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जैसे अभी मैंने जो एजुकेशन की बात कही, तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी डेवलपमेंट को ही बूस्ट करता है, तो उसको लेकर के एजुकेशन की बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। और इसको बेस बनाकर एक बहुत अच्छा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा गया है, वह भी मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं कि किस तरह से अगर एजुकेशन के सिस्टम को हमने ठीक किया, उसको अपग्रेड किया, तो रोजगार के अवसर अपने आप उपलब्ध हो सकेंगे। दोस्तों, यहां आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, कि दो बातें आपसे जरूर बताना चाहूंगा। पहला तो यह है कि जो ये इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने जो दिया है, जिसमें भारत को 130वें स्थान पर रखा है, वो दो शहरों पर आधारित है। उसमें भारत के दो शहर हैं, मुंबई और न्यू दिल्ली, यानी कि यहां कोई बिजनेस करेगा तो अब आप इसको पक्ष में लेते हैं या इसको अगेंस्ट मानते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि मुझे तो बल्कि ये लगता है कि अगर मुंबई और न्यू दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानियां, एक पॉलिटिकल राजधानी है, दूसरी आर्थिक राजधानी है, अगर वहां बिजनेस करना इतना मुश्किल हो रहा है कि 130वें स्थान पर आ रहे हैं, तो राज्यों में और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के अगर बिजनेस करना होगा तो हम तो पता नहीं और कितने पीछे चले जाएंगे। मैं इसे इस रूप में ले रहा हूं, तो शायद हमारी स्थिति बेहतर नहीं है। दूसरी बात की जो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, स्पेशली किसी किसी अखबार में वो हाईलाइट भी किया गया है, तो उसमें एक बॉक्स दिया गया है भारत के लिए, स्पेशली एक बॉक्स में कुछ मेंशन किया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि भारत में जो रिफॉर्म है वो चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस पर है। मतलब एक संभावना या आशा व्यक्त वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से भारत के प्रति की है, जिसे आप एक अच्छा साइन मान सकते हैं। तो मित्रों, ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में था और इस पर अब आगे डेफिनेटली आर्टिकल्स वगैरह आएंगे, तब फिर मैं आपको वो आर्टिकल्स प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, न्यूज और न्यूज़पेपर से बस इतना ही। अब मैं आता हूं अंतिम ईमेल के चरण पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन मित्रों के प्रति विशेष रूप से आभार जो हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने अपने अंदर आने वाले बहुत अच्छे परिवर्तनों की बात की है। उनमें से दो की मैं स्पेशली चर्चा कर दूं मित्रों। एक है छोटू कुमार मौर्य जो वाराणसी से हैं, उन्होंने लिखा है कि यहां से क्लास से जाने के बाद वहां उन्होंने एक एसे कंपटीशन में भाग लिया जिसमें 2000 स्टूडेंट थे और उसमें उनको फर्स्ट प्राइज मिला। और उन्होंने मेंशन किया है कि यहां क्लास में एसे लिखने का जो तरीका बताया गया था मैंने उसका उपयोग किया और मुझे इतनी बड़ी सफलता मिली। तो छोटू, इसके लिए हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी इस सफलता के लिए। एक मेल है चंद्रभूषण यादव का जो जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, ये भी फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने अपने परिवर्तन की बात कही है और स्पेशली इन्होंने लिखा है कि इनके जो भाई हैं वो टीचर हैं और उन्होंने स्टूडेंट्स के बीच में एक ग्रुप बनाया है, मोटिवेशनल ग्रुप बनाया है और मोटिवेशन वाले हिस्से को वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर और सभी स्टूडेंट्स के पास भेजते हैं। और चंद्रभूषण भी अपने स्टूडेंट, वो भी टीचर हैं, वो भी अपने बच्चों को इससे जोड़ रहे हैं। तो चंद्रभूषण, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से अपने बड़े भाई साहब को भी धन्यवाद पहुंचा दीजिएगा। तो मित्रों, कुछ और दोस्तों के नाम है। कीर्ति गुप्ता इलाहाबाद से, प्रियंका वानखेड़े, शिव कुमार आनंद का मैंने अभी नाम लिया था, और हेतराम प्रजा। तो मित्रों, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब आप सबसे विदा मांगता हूं। नमस्कार।